بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آلہ کی آیت کرمانک 1 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہی پیغمبر اپنے سروچ پالنہار کے نام کا گنگان کیجئے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، جس نے بھاگیہ نردھارت کیا پھر مارگ دکھایا، جس نے ونسپتی اگائی پھر اسے سوکھا اور کالا بنا دیا۔ پھر ہم آپ کو شیگر ہی اس پرکار قرآن پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوائے یہ کہ ایشور ہی یہ چاہے کہ نسندیہ وہ ہر سپشٹ اور چھپی بات کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو ہر بھلے کاریہ کے لیے تیار کر دیں گے۔ اتہ نصیحت کیجئے، یدی نصیحت لاب پرد ہو، اور شیگر ہی ایشور سے ڈرنے والا ویکتی نصیحت حاصل کر لے گا۔ किंतु अत्यंत दुर्भाग्य वाला उससे कतराएगा वही जो बड़ी आग में गिर पड़ेगा, फिर वो उसमें न तो मरेगा न ही जिएगा। निश्चित रूप से जिसने अपने आप को पवित्र बना लिया वो सफल हो गया, और जिसने अपने पालनहार के नाम का स्मरण किया फिर नमाज अदा की। नहीं बल्कि तुम तो सांसारिक जीवन को प्राथमिकता देते हो, जबकि परलोक अधिक उत्तम और शेष रहने वाला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज बुधवार है, शहरीवर की 3, मुहर्रम की 16 और अगस्त की 25 तारीख। इस सभा में सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे शौर्य गाथा, और आखिरी कार्यक्रम होगा आज कल। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। अफगानिस्तान में शांति की स्थापना को लेकर ईरानी राजदूत के साथ करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने चर्चा की है। अमेरिका के बाद अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोक दी है। अहमद मसूद ने कहा है कि अफगानिस्तान संकट का समाधान वार्ता से निकले लेकिन युद्ध के लिए भी तैयार हैं। 10 लाख अफगान बच्चों की जिंदगियों पर तलवार लटक रही है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
काबुल में ईरानी राजदूत ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व शांति वार्ताकार अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात की है। इस मुलाकात में ईरानी राजदूत बहादुर अमीनियान और अफगानिस्तान की वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों ने युद्धग्रस्त देश में शांति की स्थापना के तरीकों पर विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में ऐसी सरकार के गठन पर जोर दिया जो अफगान जनता की इच्छाओं पर आधारित हो और उसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। मंगलवार को तालिबान ने घोषणा की थी कि करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला 12 सदस्यों वाली परिषद के सदस्य हैं जो सत्ता के स्थानांतरण के दौरान सरकार चलाएगी। परिषद के 12 सदस्यों में से 7 ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसमें तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब खलील उर रहमान हक्कानी, डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला, हामिद करजई, हनीफ अतमर और गुलबदीन हिकमतियार शामिल हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अभी तक अधिकतर देशों ने तालिबानी शासन को मंजूरी नहीं दी है, और इस बीच अब विश्व बैंक ने भी बड़ी कार्रवाई की है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और आईएमएफ के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भी तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की है। विश्व बैंक के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ल्ड बैंक ने यह फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक देगा। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के हालात, खासतौर पर महिला अधिकारों की स्थिति से चिंतित होकर यह फैसला लिया है। वर्ल्ड बैंक के प्रवक्ता ने बताया कि फिलहाल वर्ल्ड बैंक ने सभी आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है और अब स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बता दें कि अमरीकी सेना 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ देगी, लेकिन इससे करीब दो हफ्ते पहले ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। इससे पहले अमरीका ने भी बीते सप्ताह ये ऐलान किया था कि वो अपने देश में मौजूद अफगानिस्तान के सोने और मुद्रा भंडार को तालिबान के कब्जे में नहीं जाने देगा। अकेले अमरीका में ही अफगानिस्तान की करीब 706 अरब रुपए की संपत्ति है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी अफगानिस्तान की आर्थिक मदद रोक दी थी। IMF ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 460 मिलियन अमरीकी डॉलर यानी 46 करोड़ डॉलर के आपातकालीन रिजर्व तक अफगानिस्तान की पहुंच को ब्लॉक करने की घोषणा की थी, क्योंकि इस देश पर तालिबान के नियंत्रण ने अफगानिस्तान के भविष्य के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है।
तालिबान के प्रतिनिधि मंडल ने अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में अफगान राष्ट्रीय नायक शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद से मुलाकात की है। अफगानिस्तान की शफकना न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शेर पंजशीर के नाम से मशहूर दिवंगत राष्ट्रीय नायक अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ विवादित मुद्दों पर चर्चा और उनके समाधान के लिए तालिबान प्रतिनिधि मंडल बुधवार को पंजशीर पहुंच गया। कहा जा रहा है कि तालिबान के प्रतिनिधि मंडल के साथ इस देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी पंजशीर पहुंचे हैं। इस बारे में अभी विस्तृत ब्यौरा प्राप्त नहीं हो सका है, लेकिन माना जा रहा है कि तालिबान अहमद मसूद से सीधे टकराने से बच रहे हैं, क्योंकि पंजशीर में लड़ाई शुरू होते ही देश के दूसरे हिस्सों में भी तालिबान के खिलाफ मोर्चे खुल सकते हैं। हालांकि तालिबान ने पंजशीर के आसपास के इलाकों में अपने लड़ाके तैनात कर दिए हैं, लेकिन मसूद का कहना है कि उनके समर्थक तालिबान के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। उनका कहना है कि वर्तमान संकट का समाधान सिर्फ बातचीत के जरिए किया जा सकता है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम रहती है तो वो तालिबान के साथ युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पंजशीर प्रांत अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ की आबादी 1,73,000 है। इस प्रांत की राजधानी बाजरक है। इस प्रांत की अधिकांश आबादी ताजिक है। 15 अगस्त को तालिबान के हाथों काबुल के पतन के बाद पंजशीर एकमात्र ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल कोष ने चेतावनी दी है कि खराब भोजन और दवा की कमी के कारण लगभग 10 लाख अफगान बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। समाचार एजेंसी अनातोली की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हैनरिएटा फोर ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान के करीब 10 लाख बच्चों की जान को गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि अफगान बच्चों की जिंदगियों को बचाने के लिए तुरंत मानवता प्रेमी सहायता की आवश्यकता है। हैनरिएटा फोर ने चेतावनी दी कि कोरोना महामारी, अकाल और कई अन्य सामाजिक समस्याओं के साथ साथ सर्दी के कारण होने वाली आर्थिक तंगी से अगले कुछ महीनों में अफगानिस्तान में स्थिति और खराब हो सकती है, इसलिए मानवीय सहायता के उद्देश्य से इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की 3,80,00,000 आबादी में से एक तिहाई आबादी को इस समय गंभीर और कड़ी भूख और कुपोषण का सामना है। गौरतलब है कि लगभग पूरे अफगानिस्तान पर इस समय तालिबान का कब्जा है, जिसके बाद से अफगानिस्तान की जनता और पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर काफी चिंता पाई जा रही है।
अमरीकी कांग्रेस में कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने विदेश मंत्रालय और न्याय मंत्रालय से उन 169 मिलियन डॉलर की जांच की मांग की है जिसे अफगानिस्तान के भगोड़े राष्ट्रपति अपने साथ संयुक्त अरब अमीरात ले गए हैं। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन सेनेटरों ने अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को एक पत्र लिखकर बाइडेन प्रशासन से आग्रह किया है कि वे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा चोरी किए गए धन को जब्त करने के लिए इसकी जांच करें। गौरतलब है कि 18 अगस्त को ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत ने घोषणा की थी कि तालिबान के हाथों काबुल के पतन से पहले गनी 169 मिलियन डॉलर बैगों में ठूंस कर अफगानिस्तान से फरार हो गए थे। काबुल स्थित रूसी दूतावास का भी कहना है कि अशरफ गनी नकदी से भरी 4 कारों और 1 हेलीकॉप्टर के साथ अफगानिस्तान से भाग गए। रॉयटर्स ने भी यूएई के विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से बताया कि गनी अबूधाबी में है और यूएई ने मानवीय हमदर्दी के आधार पर उन्हें शरण दी है। इन समस्त आरोपों के बावजूद अशरफ गनी का कहना है कि ये सभी बातें झूठी हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी में भागे हैं, यहां तक कि वो अपनी संपत्ति और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं।
कभी अफगानिस्तान के संचार मंत्रालय की कमान संभालने वाले सैयद अहमद शाह सादत आज जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहे हैं। उन्होंने तालिबान के काबुल पहुंचने से पहले ही देश छोड़ दिया था। अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री इन दिनों जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान संकट के बीच उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें वो पिज्जा कंपनी की यूनिफॉर्म पहनकर डिलीवरी के लिए जाते नजर आ रहे हैं। सैयद अहमद शाह सादत अफगानिस्तान में संचार मंत्री के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। ऐसे में उनका यूं पिज्जा डिलीवरी करना सभी के लिए चौंकाने वाला है। हालांकि सैयद को खुद को डिलीवरी बॉय कहलाने में कोई शर्म की बात नहीं मानते हैं। एक जर्मन पत्रकार ने अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री की फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। पत्रकार ने पूर्व मंत्री से बातचीत भी की जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के हाल और अपने बारे में बताया। सैयद अहमद शाह सादात पिछले साल के अंत में अपने पद से इस्तीफा देकर जर्मनी चले गए थे। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ समय अच्छे से बिताया लेकिन जब पैसा खत्म होने लगा तो उन्हें जीवन यापन के लिए पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा।
रूस इस साल के आखिर तक भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति शुरू कर देगा। रूसी कंपनी अलमाज आंते के सीईओ व्लादिस्लाव मेंशिनकोव ने मास्को में आयोजित आर्मी 2021 एक्सपो में यह जानकारी दी। मेंशिनकोव ने कहा कि S-400 का निर्माण निर्धारित समय पर आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि साल के अंत तक भारत को इस मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। मौजूदा समय में भारतीय सैन्य अधिकारियों को S-400 के संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत ने अक्टूबर 2018 में 5 S-400 मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए रूस के साथ $5.43 अरब का समझौता किया था।
सऊदी अरब ने कुछ देशों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं लेकिन साथ में कई शर्तें भी लगाई हैं। इस बीच प्रवासी समुदाय के नेताओं और व्यापारियों ने सऊदी की सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण सऊदी अरब ने भारत सहित कई देशों के नागरिकों को अपने देश की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच सऊदी अरब सरकार ने जहां इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है वहीं उसने यात्रियों के सऊदी अरब आने के लिए नई शर्तें भी लगाई हैं। नया नियम केवल उन विदेशियों पर लागू होगा जिनके पास वैध रेजिडेंसी परमिट है और सऊदी अरब से कोरोना वायरस के टीके की 2 डोज लेने के बाद एग्जिट और री एंट्री वीजा पर इस देश को छोड़ा है। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत यात्रा प्रतिबंधों का सामना करने वाले देशों को बड़ी राहत दी है। सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि केवल उनके देश में वैक्सीन की पूरी डोज लगवाने के बाद बाहर गए यात्रियों को सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
बच्चों के अधिकारों की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ का कहना है कि पिछले 7 वर्षों से युद्ध का सामना कर रहे यमन में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक कुपोषण और दूसरे ऐसे कारणों से यमन में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है जिसे रोका जा सकता था। इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोता आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे अफगानिस्तान में शिया सुन्नी एकता के बारे में जारी प्रयासों की।
अफगानिस्तान में जंग शिया और सुन्नी न रास्ते में न खाओं तो
अफगानिस्तान का मुद्दा विश्व मीडिया और राजनीतिक हलकों में पूरी तरह छाया हुआ है। ये विषय भी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। भारत में कोरोना की स्थिति में काफी सुधार देखने में आया है, जिसके चलते बिहार और दिल्ली सहित कई स्थानों पर अब पूरे रूप से बाजारों, सामाजिक संस्थानों और स्कूलों को खोला जा रहा है। ये विषय भी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो शुरू करते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में शिया धर्मगुरुओं की परिषद ने एक सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि देश में शिया सुन्नी मतभेद न कभी था और न होने पाएगा। काबुल से IRIB के संवाददाता बेहनाम यजदानी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं रविश जैदी।
अशरफ गनी के भाग जाने और तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान के बदले हुए हालात को लेकर इस देश के शिया धर्मगुरुओं की परिषद की एक बैठक हुई। धर्मगुरुओं ने अफगानिस्तान की ताजा स्थिति के संबंध में 6 बिंदुओं को पेश किया है।
अफगानिस्तान
बिंदुओं को बयान करते हुए एक शिया धर्मगुरु ने कहा कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र इस्लामी देश है, जिस पर इस देश के हर नागरिक का बराबर अधिकार है। अफगानिस्तान सरकार का आधिकारिक धर्म पवित्र इस्लाम धर्म ही होगा और इस देश में रहने वाले हर नागरिक को देश के कानून के अंतर्गत अपने धर्म के संस्कारों को अंजाम देने में पूरी तरह आजादी होगी। स्थायी शांति, हर इस्लामी धर्म के मानने वालों को बराबर का अधिकार, देश के प्रबंधन में समाज के हर वर्ग के लोगों की भागीदारी और भ्रष्टाचार एवं मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ पूरी ईमानदारी के साथ संघर्ष, ये वे बिंदु हैं जिस पर शिया धर्मगुरुओं की परिषद ने बल दिया है। काबुल में आयोजित हुई शिया धर्मगुरुओं की परिषद के एक अधिकारी का कहना है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि सबको सम्मानजनक शांति व सुरक्षा, सबके लिए बेहतर जीवन और सभी वर्गों की सरकार में भागीदारी। धर्मगुरुओं की परिषद में इसी तरह ये भी घोषणा की गई कि अफगानिस्तान सभी के लिए सुरक्षित स्थान हो, साथ ही इस देश का मुख्य धर्म इस्लाम रहे, साथ ही सभी अफगान नागरिकों को कानून का सम्मान करते हुए बराबर का अधिकार दिया जाए। एक शिया धर्म गुरु का कहना है कि अफगानिस्तान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच कोई मतभेद नहीं था और न ही कभी कोई मतभेद होगा, क्योंकि शिया और सुन्नी आपस में भाई हैं, शिया और सुन्नी एकजुट हैं। पूर्व सोवियत संघ के खिलाफ भी दोनों ने एक साथ मिलकर संघर्ष किया था। तालिबान ने अभी तक अपनी संभावित सरकार की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन अभी भी उनका दावा है कि ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं कि जो इस्लामी हो और सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार दे सके। काबुल से IRIB के लिए बहनाम यजदानी की रिपोर्ट।
अफगानिस्तान का मुद्दा G7 की बैठक में भी छाया रहा। यह मुद्दा दुनिया के राजनीतिक और प्रचारिक हलकों में पूरी तरह सुर्खियों में है। लंदन से मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अख्तर अब्बास।
तालिबान की ओर से अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों के निकलने की तारीख के खत्म होने के बाद पश्चिम की चिंता بڑھ گئی ہے.
افغانستان
گڈ سیون کے راشٹرادھیکشوں نے اس مدعے پر ایک ورچوئل آپاتکالین بیٹھک کا آیوجن کیا اور گڈ سیون کے ورتمان ادھیکش کے روپ میں برٹش پردھان منتری برٹش میڈیا کے انوسار 24 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے تاکہ اس بیٹھک کے بارے میں امریکی راشٹرپتی سے سمنوے کے لیے ٹیلی فونی وارتا کریں. اس بیٹھک کا پریڑام برٹش مانگ کو رد کیے جانے کے روپ میں سامنے آیا. آپ نے سنا ہوگا کہ امریکی راشٹرپتی نے کیا کہا اور یہ بھی سنا ہوگا کہ طالبان نے کیا کہا. ہم نے گڈ سیون کی بیٹھک میں اس بات پر سہمتی جتائی ہے کہ نہ کیول عام ناگرکوں کو نکالنے پر سمان درشٹی کون ہو بلکہ طالبان سرکار کے ساتھ سہیوگ کے بارے میں روڈ میپ بھی تیار کریں. برٹن میں پورو برٹش پردھان منتری ٹونی بلیئر کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے جب انہوں نے افغانستان پر چڑھائی کے سمے کہا تھا کہ اس جنگ کا ایک ہی پریڑام ہے اور وہ ہے ہماری جیت. اس جملے کا راجنیتک اور میڈیا حلقوں میں خوب مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس بات نے ان سینکوں کے درشٹکونوں کو اور بھی مضبوط کیا ہے جنہوں نے بہت پہلے ہی امریکہ اور برٹین کی ودھونسک جنگ کے پریناموں پر سوال اٹھایا تھا. استعفا دے چکے ایک سینک کا کہنا ہے کہ ہم کو آرام سے ہی اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا کیونکہ افغانستان کا گرہ یدھ ہمارے جنگ کی وجہ سے زیادہ ودھونسک ہو گیا. کسی بھی نیتا نے ہمارے ورودھ پر دھیان نہیں دیا. برٹین کے پورو راشٹریہ سرکشا صلاح کار لارڈ پیٹر ریکس نے ریڈیو ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پشچمی نیتا اس بات سے پوری طرح اوگت ہیں لیکن زبان پر لانے سے وہ بچتے ہیں.
It has been a humiliating period for the UK.
افغانستان سے نکلنے کے لیے بائیڈن کا فیصلہ گھٹکوں کو سوچت کیے بنا برٹین کے لیے اپمان جنک تھا. یہ امریکی گھٹکوں کے لیے ایک چیتونی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اب اپنے گھٹکوں کے بارے میں سوچتا تک نہیں بلکہ وہ افغانستان سے نکلنے کے بارے میں تراسدی پورن خاموشی کو توڑنا چاہتا ہے. بے شک افغانستان کی استھتی نے امریکہ اور اس کے پراچین و پارمپرک گھٹکوں کے بیچ اوشواس کی کھائی پیدا کر دی ہے. برٹن کے پردھان منتری کی ادھیکشتا میں گڈ سیون کی بیٹھک بنا کوئی خاص نتیجہ حاصل کیے ختم ہو گئی. یہ ورچوئل بیٹھک افغانستان کی واستوک استھتی سے کوسوں دور نظر آئی. مشتبہ قاسم زادے IRIB نیوز لندن.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کاریکرم راجنیتک چرچا.
بھارت میں کورونا سنکرمڑ اور کورونا سے ہونے والی موتوں میں اُلیکھنیے گراوٹ آنے کے بعد اب بازاروں اور ساماجک تتھا شیکشنک سنستھانوں کو کھولا جا رہا ہے. بیورے کے ساتھ دلی سے ہمارے سنواد داتا شمشاد کاظمی.
بھارت میں کورونا وائرس کے نئے معاملوں میں جہاں وردھی ہو رہی ہے وہیں کچھ راجیوں میں کورونا کی استھتی بہتر ہونے کے بعد لگائے گئے پرتیبندھوں کو اب ہٹایا جا رہا ہے. کورونا وائرس کے سنکرمن کے کم معاملوں کو دیکھتے ہوئے بہار سرکار نے اب اسکول کالج دکانیں مال پارک اور دھارمک استھلوں کو سامانیہ روپ سے کھولنے کی انومتی دے دی ہے. بہار کے مکھیہ منتری نتیش کمار نے آج آپدا پربندھن وبھاگ کی بیٹھک کے بعد اس کی گھوشنا کی. انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ کورونا سنکرمن کی استھتی میں سدھار کو دیکھتے ہوئے سبھی دکانیں پرتیشٹھان شاپنگ مال پارک ایوم دھارمک استھل سامانیہ روپ سے کھل سکیں گے. انہوں نے کہا کہ ضلع پرشاسن کی انومتی سے سبھی پرکار کے ساماجک راجنیتک منورنجن کھیل کود سنسکرتک ایوم دھارمک کاریکرم اپیکشت ساودھانیوں کے ساتھ آیوجت کیے جا سکیں گے. بہار میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ سنکرمن کے کیول 9 معاملے سامنے آئے ہیں. सरकार ने पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को 16 अगस्त से खोल दिया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की स्थिति में सुधार है, जहां नए मामले अचानक 100 के आंकड़े पार कर गए, लेकिन इस बीमारी से किसी के हताहत न होने का क्रम भी जारी है। दिल्ली में भी रोजमर्रा की जिंदगी लगभग सामान्य हो गई है और बाजारों और सड़कों पर भीड़ भाड़ पहले की तरह दिखाई दे रही है। लोगों में लापरवाही बढ़ती जा रही है और कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन भी हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनियों के बावजूद लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में भी स्कूल खोलने की तैयारी है और विशेषज्ञों की समिति ने स्कूल बड़े क्लासों से खोलने का सुझाव दिया है। उधर भारत में कोरोना के नए मामलों में अचानक वृद्धि रिकॉर्ड की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,593 नए मामले सामने आए हैं और 648 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इससे पहले कोरोना के एक दिन में 25,467 नए मामले रिकॉर्ड किए गए थे। इस समय महाराष्ट्र के अतिरिक्त भारत के 4 दक्षिणी राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं। भारत में कोरोना के इस समय 3,22,327 रोगियों का उपचार हो रहा है और अब तक इस बीमारी में मरने वालों की कुल संख्या 4,35,758 हो गई है। भारत में कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से जारी है और अब तक 59,55,004 टीके लगाए जा चुके हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम शौर्य गाथा, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का अंतिम कार्यक्रम आजकल। शौर्य गाथा।
दोस्तों, प्रोग्राम शौर्य गाथा की एक अन्य कड़ी को लेकर स्वाति और मोहम्मद अली कुम्मी हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में इराक द्वारा ईरान पर थोपी गई जंग के 7वें साल 1987 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव 598 पारित होने के वक्त ईरान की आर्थिक व सैन्य स्थिति पर चर्चा करेंगे। आशा है पसंद करेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम शौर्य गाथा में 80 के दशक में ईरान पर इराक के बासी सद्दाम शासन के हमले के मुकाबले में ईरानी राष्ट्र की पवित्र प्रतिरक्षा और इस दौरान ईरानी राष्ट्र के वीर सपूतों के शौर्य के बारे में आपको बता रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि किस तरह सद्दाम शासन के समर्थकों ने सुरक्षा परिषद में यूएन चार्टर के 7वें अनुच्छेद के तहत प्रस्ताव नंबर 598 पारित किया। इस प्रस्ताव से पहले 7 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील और जंग से हाथ रोकने की अनुशंसा की जाती थी। इन प्रस्तावों में कभी यह सवाल नहीं किया गया कि इराक ने क्यों जंग छेड़ी। हालांकि ईरान पर सद्दाम के हमले खत्म होने के 2 साल बाद सद्दाम शासन ने कुवैत का अतिग्रहण किया था और उस वक्त अमरीका व्यवहारिक रूप से कुवैत को चला रहा था। अमरीका ही कुवैत से इराक को निकालने के लिए सभी राजनीतिक, सैन्य व कानूनी कार्रवाइयां करता था।
ईरान पे इराक की ओर से थोपी गई जंग के वक्त से अमेरिका इस कोशिश में था कि ईरान को अमेरिकी ब्लॉक से निकलने पर परेशान करे, यह कहना गलत न होगा कि सुरक्षा परिषद इन ताकतों की इच्छा को प्रस्तावों की शक्ल में पेश करती है और प्रस्तावों की विषय वस्तु में सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के साथ संबंधों का असर पड़ता है।
प्रस्ताव नंबर 598 पास होने के बाद सद्दाम शासन ने उसे मान लिया, जिसकी वजह यह थी कि वो पूर्वी बसरा में करबला 5 सैन्य ऑपरेशन के बाद के हालात की वजह से कमजोर स्थिति में पहुंच गया था। सद्दाम शासन ने प्रस्ताव 598 पास होने के बाद सुरक्षा परिषद का आभार जताया, लेकिन ईरानी विदेश मंत्रालय ने 21 जुलाई सन 1987 को एक बयान में इस प्रस्ताव को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसके अनुच्छेदों में विरोधाभास और जंग शुरू करने वाले के चिन्हित न होने का जिक्र किया।
जंग खत्म करने के लिए ईरान की ओर से एक शर्त यह थी कि इराक को हमलावर देश के तौर पर चिन्हित किया जाए और ईरान पर हमला करने की वजह से इराक की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भर्स ना करे। इस आधार पर सुरक्षा परिषद के 6 प्रस्ताव इस तरह तैयार किए गए कि उनमें जंग शुरू करने के लिए जिम्मेदार की ओर इशारा किया गया था। इस अनुच्छेद से ईरान की इच्छा बहुत हद तक पूरी हो रही थी। ईरान की मांग थी कि हमलावर को चिन्हित किया जाए, जबकि इस प्रस्ताव के 3 अनुच्छेद में जंग शुरू करने के लिए जिम्मेदार को चिन्हित करने की मांग की गई थी।
उन दिनों ईरान ने व्यापक कूटनीतिक प्रयास के बजाय प्रस्ताव के बारे में अपना विचार व्यक्त किया। ईरान प्रस्ताव के अनुच्छेद में किसी तरह का बदलाव नहीं करा सका। ईरान इस प्रस्ताव को थोपी गई जंग की शुरुआत से उस वक्त तक यूएनएससी का बेहतरीन प्रस्ताव समझता था। इस प्रस्ताव के ज्यादातर अनुच्छेद से जंग को खत्म करने के लिए ईरान की ज्यादातर मांगे पूरी हो रही थीं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रस्ताव 598 जंग की शुरुआत से उसके पारित होने तक सबसे अच्छा प्रस्ताव था। अलबत्ता ईरान अनुच्छेदों के क्रम में बदलाव और उस अनुच्छेद को सबसे ऊपर चाहता था जिसमें हमलावर के निर्धारण के लिए एक कमेटी के गठन का सुझाव था। प्रस्ताव पारित होने के बाद ईरान बातचीत के जरिए इस उद्देश्य को हासिल करना चाहता था। इसी वजह से ईरान ने इस प्रस्ताव को रद्द नहीं किया और इसके पारित होने के 2 महीने के बाद इसे सशर्त मान लिया।
ईरान की कोशिश थी कि तत्कालीन यूएन महासचिव खावियार पेरेज डेकुयार प्रस्ताव 598 के लागू होने के लिए एक पूरक प्रोटोकॉल तैयार करें ताकि ईरान उसे कबूल करे। इमाम खुमैनी की मौजूदगी में तीनों पालिकाओं की 9 सितंबर 1987 की बैठक में यह तय पाया कि यूएन महासचिव से यह कहा जाए कि अगर सुरक्षा परिषद ईरान को जंग छेड़ने वाले के रूप में चिन्हित करे तो ईरान अदालती कार्यवाही तक संघर्ष विराम के लिए तैयार है, लेकिन यूएन चाहता था कि ईरान प्रस्ताव को बिना शर्त माने।
इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने 29 नवंबर 1987 को देश के अधिकारियों से कहा था, यूएन में कूटनैतिक कोशिश जारी रहे और सैन्य क्षेत्र में भी मजबूत रहें। उन्होंने विदेश मंत्री से भी कहा था कि मंत्रालय के प्रतिनिधि बातचीत के लिए यूएन जाएं और कूटनैतिक प्रयास सैन्य प्रयास से समन्वित रहे। प्रस्ताव 598 पास होने के बाद अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को ईरान से इस प्रस्ताव को मनवाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला लिया। इस लक्ष्य के लिए फारस की खाड़ी में अमरीकी जंगी बेड़े को मजबूत किया गया और उसे अधिक जिम्मेदारी सौंपी गई।
ऐसे हालात में अमेरिकी जंगी बेड़े फारस खाड़ी की पुलिस के तौर पर दाखिल हुए। जंगी बेड़े की कोशिश थी कि इराकी कार्रवाइयों के मुकाबले में ईरानी कार्रवाई को नियंत्रित करें और ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया को रोकें। व्यवहारिक रूप से अमेरिकी जंगी बेड़े फारस की खाड़ी में इराकी सैन्य ताकत के एक भाग के तौर पर काम कर रहे थे। दूसरी ओर अमेरिका सुरक्षा परिषद में ईरान के रास्ते में रुकावट डालने के साथ साथ इस कोशिश में था कि ईरान को हथियार बेचने पर पाबंदी लगाने वाले प्रस्ताव में सदस्य देशों की सहमति मिल जाए।
प्रस्ताव पारित होने के बाद अमरीका ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी करना चाहता था। प्रस्ताव नंबर 598 पारित होने के साथ ही अमेरिका ने यह फैसला लिया कि सुरक्षा परिषद के باقی سدسیوں کی مدد سے ایران کی سینی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے عراق کے صدام شاسن کو ہتھیاروں سے لیس کرے۔ اس کے علاوہ صدام کو اکسایا گیا کہ وہ اپنی رکشاتمک رونیتی کو آکرمک رونیتی میں بدلے اور ایران کے نینترن میں موجود علاقے کو دوبارہ حاصل کر لے۔
دوسری اور ہتھیاروں کے بازار کو قابو میں کیا جا رہا تھا تاکہ ایران اپنی ضرورت کے سینی سازو سامان حاصل نہ کر سکے۔ ہتھیار بیچنے پر پابندی کی وجہ سے چین بھی ایران کو ہتھیار بیچنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے علاوہ عراق سرکار کے ساتھ سہیوگ بڑھ گئے۔ اسے جنگ کے مورچوں کے حالات اور ایران کی گتیویدھیوں کی سوچنا پہنچائی جاتی تھی تاکہ عراقی فوج ایرانی سینا کے زمینی حملوں کا مقابلہ کر سکے۔
اسلامی گڑتنتر ایران کو دوہرے حالات کا سامنا تھا۔ ایک اور سینیہ وریتا و اسلامی آستھا کے مد نظر اپنے سیدھانتک دشٹیکوڑ و ادھیکار سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو دوسری اور اسے اپنی مانگ منوانے کے لیے انتراشٹری استر پر کٹھن استھتی کا سامنا تھا۔ اس پر راجنیتک، آرتھک اور سینیہ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس استھتی نے ایران کے سامنے جٹل حالات پیدا کر دیے تھے۔ ایسے حالات میں ذرا بھی لاپرواہی سے ایران 5 سال کی لگاتار سینیہ کوشش سے حاصل ہوئی شریشتا کو کھو دیتا۔ ایسے حالات میں اسلامی گڑتنتر ایران نے دیش کے پشچمی بھاگ میں شنکھلا بدھ آپریشن سے سینیہ وریتا کو باقی رکھنے کی کوشش کی تاکہ جنگ کو اپلبدھیوں کے ساتھ ختم کرے۔
دکشنی بھاگ میں عراق کی مضبوط قلعے بندی کے مدنظر وہاں سینیہ کارروائی ممکن نہیں تھی۔ عراق کے سلیمانیہ پرانت میں حلبچے علاقے میں والفجر 10 سینیہ آپریشن انہی آپریشنوں میں سے ایک تھا جو ایران نے پشچموتری بھاگ میں انجام دیا۔ والفجر 10 سینیہ آپریشن سے ایران کو امید کے مطابق نتیجہ نہیں ملا۔ 1987 سے پہلے تک ایران کی سینی گتیویدھیاں خاص طور پر سینی آپریشن مول روپ سے دکشنی بھاگ میں انجام پاتے تھے۔ دکشن میں اس طرح کے آپریشن کو دہرانے کی سمبھاونا کا نہ ہونا پشچموتری بھاگ میں سینی آپریشن جنگ کی پرکریا پر اثر انداز نہ ہونے کے ارتھ میں تھا۔
1987 میں ایران کا دھیان فارس کی کھاڑی میں امریکہ کی اور کیندرت تھا، جس سے عراق کی قلعے بندی و مورچے بندی کو الیکھنیے نقصان نہیں پہنچا، جس سے عراق کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنی سیناؤں کو دوبارہ سوویوستھت کر کے اس کی اپیوگتا بڑھائے۔ اس بارے میں اینٹونی کرڈزمین نے اپنی کتاب آدھونک جنگوں کے پاٹھ میں ایران عراق جنگ کے بارے میں لکھا ہے، 1987 کے دوسرے اردھ میں ایران کے سامنے بڑے حملے کرنے میں کٹھنائی سے عراق کو سانس لینے کا موقع مل گیا کہ وہ اپنی فورسز کو پھر سے سنگٹھت کر کے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس کے علاوہ ایران کی آرتھک سنرچناؤں پر عراق کے ہوائی حملے اور ساتھ میں تیل کے اتپادن میں کمی کی وجہ سے ایران کی آرتھک بنیاد کمزور ہوئی، جو دکشن میں کسی بڑے سینیہ آپریشن کے نہ ہونے کا کارن بنی۔ یہ بھی سمیکشا کی جاتی ہے کہ کافی تعداد میں رنگ روٹ بھرتی نہ ہونا ایران کے بڑے پیمانے پر شنکھلا بدھ آپریشن نہ ہونے میں پربھاوی تتو تھا۔
کرڈزمین کا ماننا تھا کہ ایران کی پہلی ہار یہ ہوئی کہ وہ راشٹری استر پر دیش کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں لا پایا جو اسے ایک ٹرینڈ مانو سنسادن دیتا، جسے سینی نظر سے اس کی شریشتا بنی رہتی۔ تو دوستوں، آشا کارکرم یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔
آج کل
دوستو، کارکرم آج کل کے کرنے کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہر دادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔
جب سے آدھونک سنچار مادھیموں کا ادے ہوا اور ان میں بڑے پیمانے پر لابھ اٹھانے کی پرکریا تیز ہوئی، اس سمے سے دھرم کے لیے ایک پرکار کی ویچارک چنوتی اتپن ہو گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے بھیتر سنسکرت پر نینترن کرنے اور دھارمک مدوں پر پرتکریا دینے کی کھمتا موجود ہے؟ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پارمپرک سنچار مادھیم ان سنچار مادھیموں کو کہا جاتا تھا جو آستھاؤں، اتہاس، سنسکرتی اور سماج کی عام آستھا پر استتو میں آئے تھے۔ اس میں لوگوں کے بیچ آمنے سامنے کا سمپرک پایا جاتا ہے۔ اس پرکار کے سمپرک میں سمبودھکوں کی پرتکریا تتکال ہوتی ہے اور سامنے والے پکش کے ساتھ بہت ہی آسانی سے سمپرک استھاپت ہو جاتا ہے۔ اس پرکار سے کہا جا سکتا ہے کہ پارمپرک کے سنچار مادھیم آدھکانش واستوک ارتھ میں سمپرک بناتے ہیں۔
حالانکہ اسی پریبھاشا کے ساتھ پارمپرک سنچار مادھیموں اور آدھونک سنچار مادھیموں کے بیچ انتر کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا کارن یہ ہے کہ پارمپرک سنچار مادھیموں میں آدھونک تکنیک کے پریوگ کو درشٹیگت نہیں رکھا گیا، حالانکہ آواز سے سمبندھت چھوٹے سنچار مادھیموں میں آدھونک تکنیک کا پریوگ کیا گیا ہے۔ اس بات کو سویکار کیا جانا چاہیے کہ اس سمے اب پارمپرک سنچار مادھیم آدھونک تکنیک کا پریوگ کیے بنا اپنی اپیوگتا کو باقی بنائے نہیں رکھ سکتے۔ دوسرے شبدوں میں، ورتمان سمے میں پارمپرک سنچار مادھیموں دوارا آدھونک تکنیک کا پریوگ لگ بھگ اپریہاریا ہو گیا ہے۔
دوستو، ایران میں بہت پہلے سے پارمپرک سنچار مادھیموں کی اپیوگتا رہی ہے۔ لوگوں کے بیچ ان کا پربھاؤ اولیکھنی ڈھنگ تک تھا۔ سارجنک استھلوں، بازاروں، دھرم شالاؤں، چائے خانوں، سارجنک حماموں، رات میں بیٹھ کر ایک استھان پر ہونے والی گھریلو وارتاؤں اور اسی پرکار کی عام محفلوں میں پارمپرک سنچار مادھیموں کے بارے میں چرچا ہوا کرتی تھی۔ ان استھانوں میں چائے خانوں کا وشیش مہتو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر سماج کے ہر ورگ کا ویکتی آیا کرتا تھا اور اس پرکار سے وہ ایک دوسرے سے سمپرک میں رہتے تھے۔
ایران میں پارمپرک سنچار مادھیموں کا پربھاؤ اور ان کی بھومیکا اس سمے بھی بہت اہم رہی ہے کہ جب آدھونک سمپرک مادھیم سامنے نہیں آئے تھے۔ یہ جنتا کی ضرورتوں کو درشٹیگت رکھتے ہوئے سوچنائیں اپلبدھ کرواتے تھے۔ اس پرکار سے پارمپرک سنچار مادھیموں نے راشٹریہ ایکتا اور راشٹریہ وچاردھارا کو سرکشت رکھا۔ یہ سمبودھکوں کو وسترت راجنیتک، سماجک، آرتھک اور سانسکرتک جانکاریاں اپلبدھ کرواتے تھے۔ اس سمے جانکاریاں حاصل کرنے کا یہ سروتم مادھیم تھے۔
پارمپرک سنچار مادھیموں میں سامانیتہ سمپرک ویکتیگت روپ میں رہا کرتا تھا، اس لیے اس پر سمبودھکوں کی پرتکریائیں بھی بہت ہی تیزی سے ہوتی تھیں۔ اس لیے وہ اپنا پربھاؤ بنائے رکھنے کے لیے اتی پربھاوشالی شیلی کا پریوگ کرتے تھے۔ لوگوں کو سنتوشت کرنے اور ان کی بات کو ماننے کے لیے وہ لچیلاپن بھی اپناتے تھے۔
दोस्तों, पारंपरिक संचार माध्यम विगत में कई प्रकार के थे और रेडियो, टेलीविजन तथा आधुनिक संचार माध्यमों के उदय से पहले पारंपरिक संचार माध्यम कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ही उपयोगी थे। उस काल में मस्जिदों, इमामबाड़ों, मज़ारों, धार्मिक शिक्षा केंद्र, बाजार, चायखाने, व्यायाम स्थल, सार्वजनिक हमाम, चौराहे, धर्मशालाएं और स्थानीय बाजार आदि पारंपरिक संचार माध्यमों के मुख्य केंद्रों के रूप में माने जाते थे। इसके अतिरिक्त दोस्तों या परिवारों के बीच होने वाली मुलाकातें या किसी एक स्थल पर स्थानीय लोगों का एकत्रित होना भी पारंपरिक संचार माध्यमों के सूचना स्थल हुआ करते थे। देखा गया है कि इनमें से हर एक केंद्र की अपनी विशेष उपयोगिता रही है। कभी कभी अति संवेदनशील अवसरों पर ये संयुक्त संपर्क चैनल के रूप में भी काम किया करते थे।
पारंपरिक संचार माध्यमों के इन केंद्रों में से प्रत्येक एक सामाजिक इकाई के रूप में देखा जाता था। उस समय जब पश्चिम में इस प्रकार के सामाजिक केंद्र अस्तित्व में ही नहीं आए थे, ईरान में वे अपनी पूरी शक्ति के साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भूमिका निभा रहे थे। ये माध्यम उस समय समाज के लोगों और जनता तथा सरकार के बीच अपनी निर्णायक भूमिका अदा कर रहे थे। अगर हम लोगों के लगाव, धार्मिक भावनाओं और अन्य आयाम से देखें तो इनके भीतर अधिक संयुक्त विशेषताएं पाई जाती हैं। इन पारंपरिक संचार माध्यमों की उपयोगिता की जब भी समीक्षा करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये भी आधुनिक संचार माध्यमों की ही भांति आम जनमत को प्रभावित किया करते थे। इनके भीतर नई विचारधारा को जन्म देने, आस्थाओं को परिवर्तित करने तथा अन्य विचारधाराओं की ओर रुझान पैदा करने की शक्ति मौजूद होती थी।
अध्ययन से पता चलता है कि पारंपरिक संचार माध्यम अधिकतर आस्थाओं को बदलने के बजाय उनको मजबूत करने का काम किया करते थे और इस क्षेत्र में अन्य की तुलना में अधिक प्रभावी दिखाई देते थे। पारंपरिक संचार माध्यम अपनी बात को समझाने या उसे दूसरों तक स्थानांतरित करने के लिए जिन शैलियों और माध्यमों का प्रयोग किया करते थे वे बहुत ही प्रभावी होते थे। हालांकि इनमें से कुछ की उपयोगिता इस समय कम हो चुकी है, लेकिन कुछ अन्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उपयोगिता को सुरक्षित कर रखा है।
समाजों का गठन और उनके बीच पारस्परिक संबंध काफी हद तक सूचनाओं के माध्यम से हुआ करते थे। सहस्राब्दी के आरंभिक होने और आधुनिक संचार माध्यमों के विकास के साथ ही दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में इसके बढ़ते प्रभाव के कारण ऐसा वातावरण तैयार हुआ है कि जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ जानकारियां एकत्रित की जा सकती हैं। ऐसे में वास्तविकता को पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं ताकि हर सूचना या खबर अधिक से अधिक प्रभावित कर सके और इस प्रकार के लोगों का ध्यान उस ओर अधिक से अधिक जाए। वर्तमान समय में आधुनिक जनसंपर्क माध्यम सूचनाओं को पहुंचाने, विज्ञापन देने, जानकारियां उपलब्ध कराने और इसी प्रकार से धार्मिक शिक्षाओं को आम करने में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो भौगोलिक सीमाओं के बंधन में नहीं है। आरंभ में तो ऐसा लगता है कि आधुनिक जनसंपर्क तकनीक केवल सूचनाओं को पहुंचाने और उनको स्थानांतरित करने तक ही सीमित है और ये संस्कृति के निर्माण या एक विशेष प्रकार की जीवन शैली को पेश नहीं कर सकती, लेकिन शोध कार्यों से पता चलता है कि इनके भीतर संस्कृति के निर्माण की ही क्षमता पाई जाती है।
ध्यान योग्य बिंदु ये है कि आज के संचार माध्यम बहुत ही तेजी से अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आधुनिक जनसंपर्क माध्यमों ने बहुत ही आकर्षक ढंग से चित्रों को पेश करते हुए सूचनाओं को पहुंचाने में बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका निभाई है और आज भी निभा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस समय अगर किसी को आधुनिक जनसंपर्क माध्यमों के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है तो फिर उसको अपने ही जीवन के बहुत से क्षेत्रों में इसके नुकसान का भुगतान करना होगा। ऐसे में इसका सीखना लगभग सबके लिए जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में जिन लोगों को इस बात को लेकर चिंता है कि अपनी धार्मिक शिक्षाओं को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, उनको संचार माध्यमों की साक्षरता के हिसाब से चार चीजों को सीखना बहुत ही जरूरी है: क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और क्रिएटिविटी। दोस्तों, तो कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति चाहते हैं।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों का सारांश। अफगानिस्तान में शांति की स्थापना को लेकर ईरानी राजदूत के साथ करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने चर्चा की है। अमेरिका के बाद अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोक दी है। अहमद मसूद ने कहा है कि अफगानिस्तान संकट का समाधान वार्ता से निकले लेकिन युद्ध के लिए भी तैयार है और 10 लाख अफगान बच्चों की जिंदगियों पर तलवार लटक रही है। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा यह प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को अनुमति दें। खुदा हाफिज। Thank you.